ओम शांति। एक महान योद्धा था, महायोद्धा, खड़गधारी। एक बार वो अपने घर आया तो देखा बिस्तर पर बैठा हुआ एक चूहा उसे घूर रहा है। आज तक ऐसा किसी ने उसे घूरा नहीं था। तो योद्धा बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूहा टस से मस न हुआ और उसे घूरता ही रहा। योद्धे का क्रोध बढ़ता गया। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली, फिर भी चूहा वही बैठा था और उसे घूर रहा था। योद्धा ने अपनी जोर से तलवार चलाई, चूहा उछल के कहीं और चला गया और तलवार के दो टुकड़े हो गए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। योद्धा बहुत परेशान हुआ। फिर तो उसने ठान ली कि इस चूहे को तो मार के ही रहूंगा। रात में युद्ध चालू हुआ दोनों का। सुबह हो गई, परंतु चूहा अपराजित। जो जो योद्धा हारता गया, चूहा और ही बलवान होता गया। ऐसी घटना आज तक किसी की हिमाकत न थी इस योद्धे को परास्त करने की, पर आज ऐसा हो गया कि एक चूहे ने उसे परास्त कर दिया। फिर ऐसी बारी आई कि सुबह हो गई और चूहा तो उसके बिस्तर पर जाकर लेट गया। अब तो यह योद्धा हार गया था, थक गया था, थका मांदा घर से बाहर निकला। आश्चर्य हुआ उसे, चमत्कार सा लगा, ये कौन सा चूहा आ गया कि जिसने मुझे पराजित कर दिया। अपने दोस्तों को बुलाया, क्या किया जाए। दोस्तों ने राय दी, चूहे को मारना तो व्यर्थ बात है, इसमें तो बिल्लियों को बुलाना चाहिए। तुम चूहे के पीछे क्यों लगे हो, यहां तो किसको बुलाना चाहिए, ये बिल्लियों का काम है, तुम्हारा नहीं काम। परंतु योद्धे की हार हो गई, ये खबर दूर दूर तक फैल गई। यहां तक बिल्लियों का जो समाज था वहां भी फैल गई। जब ये खबर आई कि बिल्लियों को जाना है, तो बिल्लियों की भी एक मीटिंग हुई कि कौन जाएगा, क्योंकि सुना है इस चूहा तो बड़ा ही पराक्रमी है कि जिसने एक योद्धे को भी पराजित कर दिया। तो बिल्लियों की मीटिंग हुई, तो बिल्लियों की जो नेता बिल्ली, सबने कहा कि हम तो बड़ी कमजोर बिल्लियां हैं, आप ही जाओ, क्योंकि आप नेता हो, आप बलवान हो, शक्तिशाली हो। अब जो बलवान बिल्ली थी वो भी थोड़ी अंदर से डर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि ये कोई जो चूहा है ये कोई साधारण चूहा नहीं है। आज तक मनुष्य जाति की उसने जितनी ग्रंथालय में बैठकर इतिहास की किताबें पढ़ी थी, उसमें आज तक कभी ऐसा उसने पढ़ा नहीं था कि किसी चूहे ने किसी योद्धा को पराभूत कर दिया। तो परंतु सबने कहा, साथियों ने कहा कि आपको तो जाना ही पड़ेगा, ये तो अभी इज्जत का सवाल है, पूरा बिल्लियों की जो बिरादरी उसका सवाल था। तो बिल्ली बड़े ही डरते डरते और कांपते कांपते घर में प्रवेश कर गई और देखा कि चूहा मस्त लेटा हुआ है बिस्तर पर। उसे आश्चर्य हुआ, ऐसा मनुष्य जाति में हमने कभी पढ़ा नहीं, कोई किताब में ऐसा। तो वो अपने ही मन में, अवचेतन मन में जरा सोचने लगी कि किस विधि से इसे पराजित किया जाए, और इतना सोच ही रही थी कि अचानक उस चूहे ने आक्रमण कर दिया बिल्ली पर। यह तो इतिहास में आज तक नहीं हुआ था कि किसी चूहे ने बिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ये बिल्ली पहले ही भयभीत थी, पहले ही कांप रही थी और कांपते कांपते घर में प्रवेश किया था। थोड़े ही देर में बिल्ली बाहर आ गई, मृत और मर गई। ये खबर सुनने के बाद तो बहुत ही निराशा फैल गई चारों ओर। फिर उस योद्धे ने पूछा कि अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा, इससे काम नहीं होगा, अब राजमहल की बिल्ली मंगानी पड़ेगी। तो वो राजा के पास जाता है और अपना निवेदन करता है कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या है। राजमहल की कोई बिल्ली हो तो दो, तो राजा अपनी एक बिल्ली देता है, पर वो बिल्ली जो देता है बड़ी ही साधारण सी, अदना, बड़ी छोटी सी बिल्ली। उसे लगता है कि ये बिल्ली से क्या होगा। जब वो बिल्ली ने कुछ नहीं कर पाई, नेता बिल्ली जो इतनी बहादुर और पराक्रमी थी, तो ये बिल्ली क्या कर पाएगी। परंतु क्योंकि राजा ने दी थी तो वो बिल्ली को लेकर जाता है। ये जो बिल्ली है, नई बिल्ली, राजमहल की बिल्ली, राजसी थाटबाट वाली बिल्ली, कमरे के अंदर प्रवेश करती है, चूहे को मारती है और बाहर लेकर आती है। सारी बिल्लियों का समाज इकट्ठा हो जाता है और जय जयकार होने लगती है। ये क्या तुमने, इसका क्या राज है, किस विधि से तुमने उस चूहे को मारा, ऐसा चूहा कि जिसने इस योद्धे को भी पराजित कर दिया और बिल्लियों के नेता को भी पराजित कर दिया, मार दिया, किस विधि से, राज क्या है, कैसे तुमने उस चूहे को मारा। ये एक ज़हीन कथा है। उस बिल्ली ने जो उत्तर दिया, बड़ा ही अनूठा उत्तर है। उसने कहा, इसमें विधि की क्या बात है, केवल यह स्मरण कि मैं बिल्ली हूं और वो चूहा है काफी है। इसमें कोई विधि नहीं है, इसमें कोई राज नहीं है, केवल यह स्मरण, जब मैंने घर में प्रवेश किया, इस स्मृति से प्रवेश किया कि मैं बिल्ली हूं और वह चूहा है, चूहे की क्या बिसात जो बिल्ली को मार सके। केवल ये स्मरण, मैं कौन हूं, इतना ही स्मरण काफी है। हमें चूहों से लड़ाई नहीं करनी है, हमारी शान के खिलाफ है। बाबा ने आज कहा है, तुम सब शिव शक्तियां हो, बकरियां नहीं हो, शेरनियां हो, तुम सब शिव शक्तियां हो। एक एक शक्ति सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में क्या है, त्रिशूल है, और तुम्हारी सवारी क्या है, माया। तो माया पर जो सवार है, शिव शक्तियां जो है, वो माया के अधीन नहीं हो सकती। हाथ में त्रिशूल स्थिति की निशानी है। मास्टर प्रणेत्री, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ, मास्टर त्रिनेत्री। तो नेत्र पर कोई पट्टी तो नहीं बांध रखी है, नेत्र पर पट्टी बांधकर ढूंढ तो नहीं रहे हो, कहां है कहां है, बाप हमें ढूंढ रहा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारे टाइटल्स, बाबा ने कहा त्रिशूल किसकी निशानी है, स्थिति की निशानी है। केवल ये स्मरण कि मैं कौन हूं, साधारण नहीं, शक्ति हूं, शक्ति अर्थात मायाजीत। केवल ये स्मरण ही काफी है। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक समाज सेवी आता है, वो कहता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, स्त्रियों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो, मैं भी चाहता हूं कि स्त्रियों का परिवर्तन करूं, मैं भी चाहता हूं कि महिला जो है नारी का उद्धार करूं, मैं भी चाहता हूं कि स्त्रियां परिवर्तन हो, या उनका कल्याण करूं, या उनको सपोर्ट करूं। उत्तर में वो कहते हैं, हैंड्स ऑफ, यू हैव नो बिजनेस टू सपोर्ट देम, लीव देम अलोन, उनको अकेला छोड़ दो, दे हैव ऑल पावर्स टू डू व्हाट दे हैव टू डू, उन्हें तुम्हें कोई सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें स्वयं ही इतनी शक्ति भरी हुई है कि उन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। किसी एक अमेरिका के लेक्चर में उन्होंने एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है। विवेकानंद की जो मृत्यु हुई है 1902 में हुई है, बाबा का जो अवतरण हुआ है 1936। एक बात एक जगह उन्होंने कही है कि एक समय ऐसा आएगा, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा कि भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्म संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। तो यहां की सारी आत्माएं कौन है, हम शिव शक्तियां है, हमारे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल भी एक अद्भुत सी चीज है। त्रिशूल और किसी संस्कृति में नहीं है, केवल हमारी ही संस्कृति में। उसमें तीन बातें हैं, तीन का बड़ा महत्व है इस संस्कृति में। आज तक तीन का महत्व केवल धर्म के सिद्धांत में था, परंतु तीन का महत्व वैज्ञानिक रीति से भी है। जैसे वो एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तीन तीन तीन, सत्यम शिवम सुंदरम तीन, सच्चिद आनंद स्वरूप तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन। ये संसार में हिंदू धर्म में तीन का ही महत्व है। अगर आप किसी के पास जाओ किसी शिव मंदिर में और उसको पूछो कि ये त्रिशूल क्यों रखा है, इसका क्या प्रयोजन है, तो उन्हें भी नहीं पता इसका क्या प्रयोजन है। वो कहते बस है त्रिशूल। तो बाबा यहाँ कह रहे ये त्रिशूल जो है, और तीन का और एक भी एक महत्व है। तीन जो है उसको अगर गुणन फलन मल्टीप्लाई करो तो नाइन होता है, और जो नाइन है उसके कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो जो अक्षर आएगा उसकी जो सम होगा वो नाइन ही होगा। 18 जो है आठ और एक नौ, 27 जो है सात, और मनुष्य जाति के जितनी संख्याएं हैं उसमें नौ एक नौ तक ही आके रुकती है, नौ से आगे नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे हाथ में त्रिशूल है और तुम्हारी सवारी क्या है, माया है। तो शिव शक्तियां अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने वाली शिव शक्ति अगर मैदान में आ जाए तो जय जयकार होगा। तो आज की मुरली में बाबा किससे मिल रहे हैं, लंदन निवासियों से मिल रहे हैं, हम सभी से मिल रहे हैं। क्या कहा बाबा ने, बाप दादा लंदन निवासियों से मिल रहे हैं, और मिलना अर्थात बहुत बड़ी परिभाषा है मिलने की भी, मिलना अर्थात बाप समान बनना, क्योंकि ये मिलन साधारण मिलन नहीं है, ये मिलन अमूल्य मिलन है, ये मिलन महान मिलन है, ये मिलन वंडरफुल मिलन है, ये मिलन महान मिलन है, और ये मिलन अचानक की लॉटरी है, ये मिलन एक एग्जाम्पल है, ये मिलन अव्यक्ति मिलन है, यादगार है, मधुर मुलाकात है, ऐसा ये मिलन है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये मिलन अर्थात क्या है, बाप समान बनना, ये मिलन की परिभाषा है। बाप दादा ने इशारे दिए थे, कौन सा, सर्व गुण और सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से मास्टर आत्माएं हो, जो इशारा दिया था उसी प्रमाण स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वगुण संपन्न अनुभव करते हो। प्रश्न पूछा है बाबा ने, एक एक शक्ति को और एक एक गुण को क्या करो, सामने रखो और चेक करो कि कितनी परसेंटेज में उसका स्वरूप बने हैं। चेकिंग की पॉइंट दी है यहाँ पर बाबा ने, होमवर्क दिया है यहाँ पर। बाप बच्चे तो बाप के भी सिर का ताज है, पिछले संडे में था ना नैरोबी से मुलाकात, बाप बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के क्या है, हीरे मणि, सतयुग का उदाहरण दिया था, फिर डबल हीरे के बारे में भी कहा था। तो बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, एक एक बच्चा बाप दादा के सिर का क्या है, ताज है। तो जो इशारा दिया है उसी प्रमाण अनुभव करते हो, बाबा ने यहाँ प्रश्न पूछा है। सर्व गुणों से संपन्न और सर्व शक्तियों से संपन्न, एक एक शक्ति को और एक एक गुणों को सामने रखो और चेक करो कि कितनी परसेंटेज में हमने उसको धारण किया है, ये होमवर्क दिया है बाबा ने। और बाबा ने कहा है कि बाप दादा का ही एग्जाम्पल है, बाप और बच्चों का ये जो संबंध है किस लिए होता है, फॉलो करने के लिए होता है। फॉलो भी किसको करना है, निराकार और साकार, ये दो को फॉलो करना है। और परंतु ये फॉलो करने में मुश्किल क्यों है, काम सहज परंतु फिर भी मुश्किल हो जाता है। सहज क्यों है, क्योंकि मेहनत मक्खन और किसने करके रखा है? पहले वालों ने मेहनत की, मनन किया, मक्खन निकाल के रखा है। एक दूसरा अनुभव के रूप में है ये ज्ञान, इसके लिए सहज है, कोई रटने की बात नहीं है। ये जो ज्ञान है वो अनुभव का ज्ञान है, एक एक पॉइंट का अनुभव, एक एक पॉइंट में अनुभव समाया हुआ है। ये ज्ञान की पॉइंट अनुभव की पॉइंट है, कहानी के रूप में सुनाई जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है। प्राप्तियों का अनुभव है, समीप संबंध है, फिर भी मुश्किल। और बाबा ने आज क्या कहा, ये किसी किसी को मुश्किल लगता है और किसी किसी को सहज। अब जिसको सहज लगता है उसको भी कभी कभी मुश्किल लगता है और कभी कभी सहज। मंदिरों में किसकी महिमा हो रही है? हमारी भी, बाप की, और बाप के साथ हमारी भी। किस रीति से महिमा हो रही है? मुश्किल को सहज करने वाले विद्यापति, मास्टर, नॉलेजफुल मास्टर, विघ्न विनाशक हमारा गायन है, संकट मोचन हमारा गायन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान, गुरुदेव की तरह हम पर कृपा करो। भक्त गा रहे, चिल्ला रहे। दो संडे पहले था ना, पांच ग्रुप बाबा ने बताए थे। सबसे पहले भक्त आत्माएं, कुछ भक्त रजोगुनी, तमोगुनी, सतोगुनी, अनगिनत भक्त है, भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति कर रहे, चिल्ला रहे, पुकार रहे, आह्वान कर रहे। किसका? हम आत्माओं का। भक्त आत्माएं आह्वान कर रही है। जो धार्मिक है, भिन्न भिन्न थ्योरी, कोई की लाल, कोई की पीली, शोकेस है उनका भी, उसमें भी शोपीस है उनका रखा हुआ, उसकी भी बाजार है, उसकी भी रौनक है। वो आत्माएं भी आह्वान कर रही है। बाबा ने कहा था कि हे मास्टर गॉड, हे मास्टर नॉलेजफुल आत्माओं, उनकी आवाज सुनाई देती है। क्या कोई संकल्प चलता है? रहम की नजर, कल्याण की नजर उनके ऊपर दौड़ाओ। तीसरी थी वैज्ञानिक आत्माएं, कितनी मेहनत, कितना दिमाग, और जो कुछ करते हैं किस लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। वो भी ब्रदरहुड की नजर उनकी तरफ है। अंचली दो, नास्तिक है कर छोड़ नहीं दो। चौथे राजनीति, राजनीति वाले भी चौपड़ का खेल, बाबा ने कहा कभी पाव बारा तो कभी हार हो जाती है। वो भी नाम मान शान के भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनके ऊपर उनकी भी आवाज सुनाई देती है। और चौथी जनरल पब्लिक, जिसके लिए बाबा ने कहा कौन सा गीत गाते हैं? चाहिए चाहिए, ऐसा गीत गाओ कि उनका गीत समाप्त हो जाए। तो हम वह आत्माएं हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। हम 100 का मंत्र किसके लिए है? हमारे लिए। जो चित्र है वो हमारे चित्र है, ऐसा अनुभव होता है। प्रश्न में पूछा है ना बाबा ने, तो ये मंत्र किसका है? हम, हमारा, हमारे लिए। हम ही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये जो भी टाइटल्स जो बाबा दे रहे हैं ये किस लिए है? ये सब हमारे टाइटल्स है, श्रेष्ठतम जो भी टाइटल्स बाबा दे रहे। आज की मुरली पढ़ते समय मुझे और एक मुरली याद आई, जो आज बाबा ने भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए हैं, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी। एक बहुत समय पहले एक अव्यक्त वाणी चली थी जिसमें बाबा ने कहा था पांच प्रकार की ड्रेस नहीं पहनो, बाप तुम्हारे लिए सोमान की ड्रेस लाए है, इस ड्रेस से तुम्हारा श्रृंगार करते हो। पर तुम कौन सी ड्रेस पहनते हो? सबसे पहले तो मिट्टी की ड्रेस पहन लेते हो, मिट्टी की ड्रेस अर्थात देहाभिमान। दूसरी ड्रेस पहनते हो, पहली मिट्टी वाली, दूसरी बदबू वाली ड्रेस। बदबू वाली ड्रेस कौन सी है? देह और देह के संबंधों में लगाओ। तीसरी ड्रेस कौन सी है? ये बदबू वाली। तीसरी ड्रेस है दाग वाली, दूसरों के अवगुणों को धारण करते हो अपने अंदर, वो है दाग वाली ड्रेस। चौथी ड्रेस है चमड़ी वाली ड्रेस, चमड़ी वाली ड्रेस अर्थात क्रिमिनल आए। और पांचवी जो ड्रेस है वो खून से लथपथ, आत्मघात, बार बार विकर्म करना। ये पांच प्रकार की ड्रेस बाबा ने उस मुरली में कही थी। कौन सी मुरली थी? मियां बीवी राजी वाली, मियां बीवी राजी वाली जो मुरली थी ना, बेबीज नहीं बनो, बीबी बनो और मियां को राजी करो। ये मुरली थी। तो हमने उस समय एक अभ्यास किया था, विश्व में 5 महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, आर्टिक ओशन और नीचे है कौन सा, सदन, दक्षिण महासागर, 5 महासागर है। अमृत वेला एक एक ड्रेस को बाबा ने उस मुरली में कहा था, इस ड्रेस को जला दो और राख को भी नहीं रखना, राख को क्या करो, सागर में डुबो दो। तो 5 ड्रेस है, 5 सागर है, अमृत वेले जाकर एक एक ड्रेस को एक एक सागर में डुबो देना। उस समय हमने इस तरह का अभ्यास किया। तो आज जब टाइटल्स की बात चल रही थी तो ये मुरली याद आई। तो बाबा कह रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वगुण संपन्न, ये मुश्किल काम नहीं है, सहज काम है, फिर भी मुश्किल लगता है तो जरूर आपकी ही कोई ना कोई कमजोरी होगी। कौन सी कमजोरी की बात कह रहे हैं बाबा आज, कि जिसके वजह से जो काम सहज है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी जो मुश्किल अनुभव कर रहे हैं, कौन सी वो बातें हैं? बाबा ने कहा पिछले संडे वो कौन सी बातें थी जो सहज था परंतु मुश्किल हो रहा था, व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ संकल्प के हथौड़े से तोड़ते रहते हैं समस्याओं को, और दूसरा क्या था, भूल जाता है समय पर, और आज क्या कहा, बातें, बातें, बातें हैं तो बाप नहीं, आधा कल्प से बातें सुनते आ रहे हो। कौन सी बातें सुनी आधा कल्प से, रामायण और भागवत, जब बातें थी तो बाप नहीं था, अब भी बातें है तो बाप को खोदोगे, मतलब बाबा को बातें पसंद नहीं है, तो जो उसको पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं बातें है वृक्ष और बाप है बीज, बीज और वृक्ष, और वृक्ष का बहुत विस्तार है, और विस्तार भी कैसा है, रंग बिरंग का विस्तार है, उस विस्तार में चले गए तो फंस जाएंगे, फिर उससे निकलना मुश्किल है, वो आकर्षण करते हैं, एक के बाद एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती, एक भूल के बाद दूसरी भूल, दूसरी के बाद तीसरी, भूलों का चक्र है, बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं विस्तार में, और फिर चाहना पूरी नहीं होती, और फिर दिल शिकस्त हो जाते, और फिर शिकायत करने लगते, और क्या कहते हैं, व्यक्ति और परिस्थितियों की शिकायत, उसमें उलझते जाते हैं, चक्रव्यूह है वो, विशियस साइकिल है एक, जिसमें कि आत्मा खो जाती है, बंध जाती है, बंदी ग्रह है जैसे वो संकल्पों का, उससे निकल ही नहीं पाती है, ये जाल है एक। तो बाबा कह रहे हैं कि इन बातें, अच्छा अगर बातों से इतना ही प्यार है तो कौन सी बातें ध्यान रखो फिर, अगर बातें से जुदा हो ही नहीं सकते, वर्णनीय पीड़ा का अनुभव होता है बातों से जुदा होने के लिए, तो प्रभाकर भाई कौन सी बातें का याद करना चाहिए फिर, अगर बातें ही इतनी पसंद है कि बहुत हृदय में आघात होता है अगर बातों को छोड़ना, तो कौन सी बातें धारण करो, जो बाप की बातें है उनको याद रखो, और कौन सी बातें हैं, जो ड्रामा की बातें हैं उनको याद रखो, अगर बातों से ही प्यार है तो कौन सी बातें याद रखो, यज्ञ के इतिहास की बातें याद रखो, अगर बातें ही याद करनी है और बातों से ही इतना अतीव प्रेम है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन की बातें याद रखो, अगर बातें ही याद रखना है तो दादियों के जीवन की प्रेरणादायक जो प्रसंग है उन सभी प्रसंगों को याद रखो, अगर बातें ही याद रखनी है तो उन बांधेलियों की बातें याद रखो, जो बाप भी एंजॉय करता है उनकी चतुराई, उनके इन्वेंशन और उनके तरीके देखकर, तो उनके इन्वेंशन को याद करो, अगर बातों को ही याद रखना है तो, अगर बातें ही याद रखनी है तो पुरुषार्थ की बातें याद रखो, बातें ही याद रखनी है तो ज्ञान का एक एक रत्न जो है उसको याद करो, ज्ञान का एक एक रत्न ऐसा है कि उसमें इतनी पावर है कि उसके सामने विघ्न परिस्थिति ठहर नहीं सकती। 88 की एक मुरली है 10 जनवरी, जिसने बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान जो है इतना अमूल्य है, एक एक रत्न है, कोई भी विघ्न इस ज्ञान के रत्नों के सामने ठहर नहीं सकता। केवल उसको यूज करने की विधि चाहिए, मनन चाहिए तो होगा, नहीं तो नहीं। तो बातों का बहुत विस्तार है, रंग बिरंगी बातें हैं, उलझन है उसमें, प्रश्न ही प्रश्न है, जंगल है वो बातों का, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। बातों के पीछे जाते हो ना तो बाप हाथ में आता है, वृक्ष को पकड़ना चाहते हो, वृक्ष को हाथ में लेना चाहते हो, ना तो वृक्ष आता है ना ही बाप आता है, और जो विस्तार को भी बुद्धि में नहीं समा सकते हो, इसके लिए फिर दिल शिकस्त उदास हो जाते हो। इसके लिए बाबा ने कारण बताया कि ये ज्ञान तो बहुत सहज है, बाबा को फॉलो करना सहज है, साकार को और निराकार को फॉलो करना सहज है, क्योंकि संबंध बाप और बच्चों का है। फिर भी मुश्किल हो जाता है, तो मुश्किल का कारण आज बताया बातें, और उसका निवारण क्या है? निवारण क्या है? बिंदु लगा दो, क्योंकि बाप बिंदु है तो बातों को बिंदु लगा दो। एक दूसरा वो भी कैसे आज की मुरली से निवारण, एक बाप को देखो, बातों को नहीं देखो, और किसी को नहीं देखो, और आज ही की मुरली से, आज की मुरली से जो निवारण है वो क्या करो? स्वयं को बिजी कर दो, स्वयं को क्या कर दो? बिजी कर दो। उदाहरण कौन सा दिया बाबा ने? जैसे कोई मेगा प्रोग्राम, विशाल कार्य करते हो, उसमें धुन लग जाती है, और कोई बात बीच में आती है तो उससे किनारा कर देते हो, खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता है, ऐसी अवस्था हो जाती है उसमें। सेवा में स्वयं को बिजी कर दो, हाँ वो दूसरी विधि है। तो यहाँ जो है मुश्किल की बात चल रही है, सहज करने के लिए स्वयं को क्या कर दो? बिजी कर दो। फुर्सत ही ना हो, ना फुर्सत होगी ना विस्तार होगा। विस्तार कब होता है? जब बहुत टाइम है व्यर्थ की बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए। बाबा ने कभी एक मुरली चलाई थी ना, वेट गेन वाली, वजन किससे बढ़ता है? सड़ी हुई बातें और तली हुई बातें खाने से। उसमें था पुरानी बातें और दूसरों के अवगुण देखना, ये जो है इससे वजन बढ़ता है, और वजन कम करने की विधि भी बताई थी उस मुरली में। कौन सी? एक्सरसाइज करो और परहेज करो। और आज की मुरली में वजन कम करने की विधि, वजन कम करने की विधि मनन और सेवा में बिजी हो जाओ। दो विधि आज फिर से बताई कि सेवा में बिजी हो जाओ और मनन करो। मनन से आत्मा शक्तिशाली होगी। केवल ज्ञान से आत्मा शक्तिशाली नहीं, परंतु ज्ञान के चिंतन मनन से आत्मा अधिक शक्तिशाली बन जाती है। जैसे कौन सा उदाहरण दिया बाबा ने? खाने का। खाना जब खाते हो तो खून बन जाता है, और खून फिर शक्ति का काम करता है। तो ये भोजन भी अगर खा लो तो बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी, फिर शक्तिशाली बुद्धि पर माया वार नहीं कर सकती। तो केवल ज्ञान सुनना, लिखना, पढ़ना नहीं, परंतु उसकी गहराई में जाना, उसको समा लेना अपने अंदर। हमारी धमनियों में रक्त की तरह ज्ञान स्पंदित हो, रग रग में ज्ञान समाया हुआ हो, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। तो मुश्किल को सहज करने की विधि क्या है? बाबा ने कहा सेवा में बिजी हो जाओ, टाइम ही ना मिले। बुद्धि के लिए क्या कहा? डायरी बनाओ। पिछले संडे था ना, भूल जाता है टाइम पर, समय की डायरी में दिखाई नहीं देता है कुछ। आज कहा बुद्धि को बिजी रखने की डायरी। तो बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ और मन का टाइम टेबल बनाओ। एक जैसे स्थूल टाइम टेबल होता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर ये करना है, उस समय मन में क्या संकल्प हो, कौन सा समान बुद्धि में हो, वो है मन की दिनचर्या। मन का टाइम टेबल, बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। तो उसके बाद बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। यहां और एक बात कही, आपका नाम क्या है? सहज योगी। और फिर कहते क्या हो? कभी सहज कभी मुश्किल। तो बाप दादा को ये पसंद नहीं है। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? जैसा नाम है वैसा ही स्वरूप, जैसा बाप वैसा बच्चे, सन शोज फादर। पार्टियों से मुलाकात। क्या कहा बाबा ने वहां पर? तुम सब कौन हो? अमूल्य रत्न हो। एक एक रत्न में विशेषता है, अति प्रिय है, अमूल्य है, सिर का ताज, नैनों के नूर, गले का हार, मस्तक के मणि हो, तो एक एक की आवश्यकता है। एक एक कैसा है, स्वीकार किए हुए रत्न हो, बाप दादा द्वारा स्वीकार किए हुए, भगवान के स्वीकार किए हुए रत्न। अगर हम भगवान के स्वीकार किए हुए रत्न है तो ये सब भी भगवान के स्वीकार किए हुए रत्न है। इसके लिए फिर टकराव खत्म। मुरली में था ना अभी टकराव का कारण देहवान, उसमें भी विस्मृति कि ये सब भी कौन है। फिर अगर हम स्वीकार किए हुए रत्न है तो ये सब भी उसी के स्वीकार किए हुए रत्न है। हरेक में कोई ना कोई विशेषता है, हरेक की उंगली की आवश्यकता है। ये विश्व परिवर्तन का कार्य हरेक के द्वारा संपन्न होने वाला है। हर ब्राह्मण और हर भाई और हर बहन बाप के काम की है। हरेक अपनी अपनी रीति से महारथी है। हरेक की ऐसा नहीं समझना केवल महारथियों की उंगली से ये पहाड़ उठेगा, परंतु हरेक अपनी अपनी रीति से महारथी है। हरेक विशेष है, हरेक महान है, हरेक श्रेष्ठ है, हरेक की अति आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है इस कार्य में संपन्न होने के लिए। जैसे भक्ति में गायन है, भगवान की नजर जब पत्थर पर पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, पारस बन जाता है। तो इन सभी आत्माओं पर, जितनी ब्राह्मण आत्मा है, सब पर परमात्मा की नजर पड़ी है तो सभी पारस है। भगवान की जहां नजर पड़ी है, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, वो उसको गुरु उसको कहता है कि बस, कोई कहता है चरण कमल की रज, कोई कहते हैं दृष्टि, कोई कहते हैं पैर लगने के बाद वो शिला पत्थर से जागृत हो गई। तो सभी आत्माएं वैसी है, केवल हम नहीं। तो इससे वो टकराव जो है वो खत्म होगा। और क्या होगा, संस्कार मिलन की रास, जो आज बाबा ने कहा ना मुरली में, टीचर से मुलाकात, संस्कार मिलन की रास भी कब होगी, जब ये टकराव खत्म हो जाएगा, जब हमारे प्रति, हमारे मन में सभी के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं होगी कि ये सभी महान आत्माएं हैं, सभी भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं, सभी अधिकारी आत्माएं हैं, कोई साधारण आत्माएं नहीं है। यहाँ पे बाबा फिर सेवा का श्रृंगार है। जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है लंदन वाला, तो उसमें रानी का श्रृंगार है, तो ये सभी कौन है, बाप दादा के सेवा के श्रृंगार है, सभी महान आत्माएं हैं। फिर यहाँ बाबा लंदन की पार्टी से आगे क्या कह रहे हैं कि अपनी सेवा की श्रेष्ठता को जानो और मूल्य को जानो। हम जो सेवा भी कर रहे हैं वो विश्व कल्याण का कार्य है, ये कोई साधारण कार्य नहीं है, इसको स्वयं जानना। बाबा यहाँ शक्ति भवन की शक्तियों से बात कर रहे हैं। जैसा स्थान है वो स्थिति का को दर्शाता है, स्थिति की याद दिलाती है। वही स्मृति स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, कमजोर नहीं हो। फिर यहाँ बाबा ने वही वाली बात की, त्रिशूल वाली और सवारी वाली। हरेक पांडव, हरेक शक्ति का गायन अपना अपना है, सभी अपने अपने रीति से महान है। दूसरी जो पार्टी है उसमें बाबा थोड़ी और प्रकार की बातें कर रहे हैं कि सभी क्या हो, महान और पूज्य आत्माएं हो। और महान और पूज्य बनने का आधार क्या है, स्वयं को क्या समझो, मेहमान समझो। मेहमान का किसी में भी लगाव नहीं होता, इस देह रूपी मकान में भी निर्मोही, देह से उपराम, देह से ही उपराम है, तो देह के वैभव और देह के संबंध से तो उपराम है ही है। तो स्वयं को क्या समझो, मेहमान समझो। इस संसार में मैं मेहमान हूँ, जो भी साधन है वो केवल सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, और फिर न्यारे, बाप के प्यारे और न्यारे। एक तो धारणा ये है, हम सुबह और कुछ और एक बात कर रहे थे, एक तो स्वयं को मेहमान समझना, दूसरी और एक सिद्धांत है, वो कहता है कि स्वयं को क्या समझो, गेस्ट नहीं होस्ट समझो। होस्ट अर्थात मेजबान, वो कैसे, मैं आत्मा अगर होस्ट हूं ये समझना, और ये सारे जो है ये मेहमान है, ये आ रहे और जा रहे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये एक दूसरी सिद्धांत है, जो भी इस तरह से सोचते हैं कि मैं कौन हूं, मेजबान हूं, आतिथेय, एक है अतिथि, एक है आतिथे, एक है आतिथ्य। तो आतिथेय समझना, होस्ट समझना कि मैं आत्मा तो यहां हुई हूं, परंतु ये जो भी है, सुख आ रहा है जा रहा है, दुख आ रहा है जा रहा है, ये संसार में व्यक्ति जो है, जो आसपास जो है, वो आज है कल नहीं है, वो सारे ही मेहमान है। ये एक दूसरा सिद्धांत है। एक तो स्वयं को मेहमान समझना कि मैं इस धरती पर मेहमान हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं हो, कुछ थोड़े समय के लिए हूं, बस विजिटर हूं, थोड़े समय के लिए आया हूं। दूसरा है मेजबान समझना कि मैं होस्ट हूं और ये सब गेस्ट है। अब गेस्ट कितना देर रहेंगे, उनको तो जाना ही है, तो मेरा क्या आकर्षण उनमें। तो बाबा यहां कह रहे हैं कि स्वयं को क्या समझो, मेहमान समझो। मेहमान की किसी में भी आसक्ति नहीं होती, इस मेहमान पर बहुत सारी मूल्य है। कुछ भी अपना नहीं, मालिकपन, ओनरशिप का त्याग, ये त्याग का ही भाग्य है। कुछ भी मेरा नहीं है यहां पर, जो आज है वो बस सेवा के लिए। जैसे वो बैंक में कोई मैनेजर होता है ना, सारे दिन भर क्या करते हैं, पैसे ही गिनते रहते हैं, पर उसको ऐसा लगता है ये मेरे पैसे हैं, नहीं उनकी अपनी सैलरी मिलती है, बस वो उसके है। इसमें अगर कुछ गड़बड़ किया तो बहुत मुश्किल है फिर तो सारे दिन भर पैसे गिनते रहते हैं, परंतु उस पैसों में कोई आसक्ति नहीं होती, उसको पता है ये मेरे है ही नहीं। तो ये संसार भी जो है वो भी, इसमें की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, और जो साधन है वो भी मेरे नहीं है, केवल सेवा के लिए दिए गए, सेवा की और उपराम। मोह ममत्व उसमें नहीं होगा, किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, क्योंकि अगर मोह रखा तो दुख होगा। मोह अपने साथ दुख को लेकर आता है। किसी भी चीज को अपना माना कि वो छिन जाएगा, कोई ना कोई उसे छीन कर लेके जाएगा, समय छीनेगा या कोई व्यक्ति, परिस्थिति, कुछ ना कुछ आएगा और वो छीन जाएगा और दुखी होना पड़ेगा। तो इस संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, ये भाव अंदर ही अंदर इसको प्रगाढ़ करते जाना है, इसको गहराई से अपने अंदर स्थापित करना है कि मैं यहां एक मेहमान हूं, इस देह में भी मेहमान हूं। ये सराय है, धर्मशाला है, ये देह भी धर्मशाला है, आज इस देह में कल उस देह में रैन बसेरा है। तो यहां बाबा मेहमान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां फिर से बाबा ने शक्तियों के लिए कहा कि शक्तियां हो, शेरनियां हो, बकरी नहीं हो। बकरी अर्थात मैं, तो मैं खत्म। शक्तियां जब मैदान में आ जाएगी तो जय जयकार होगी, और अभी हो रही है। फिर बाबा टीचर से मुलाकात कर रहे हैं, जिनके लिए कहा कि क्या श्रृंगार है, महान और निर्माण। निर्माण अर्थात नम्रचित, संस्कार मिलन की रास। अभी संस्कार मिलन की रास पर हम चर्चा करेंगे, कैसे की जाए संस्कार मिलन की रास। इसके लिए बाबा ने कुछ विधि बताई और वरदान में भी कुछ बोला है, आज के वरदान में क्या करो संस्कार मिलन की रास के लिए। पहले तो ये सोचना होगा संस्कार मिलन की रास होती क्यों नहीं है। कल ही मुरली थी ना, कल या परसों टकराव का कारण देहाभिमान। क्यों टकराव होता है, क्यों टकराते हैं, व्यक्ति व्यक्ति से टकराता है, बोल बोल से टकराते हैं, संस्कार संस्कार से टकराते हैं, भावना भावनाओं से टकराती है, विचार विचार से टकराते हैं, मत मतों से टकराते हैं। कल की मुरली में ही था ना, एक रस एक मत समाने की शक्ति, भिन्नता को समा दो दृष्टांत बन जाओगे, एक माला के मणके सब एक जैसे, एक की लगन में मगन, एक रस तिथि। तो टकराव, यहां पर बाबा ने क्या विधि बताई, हम फिर से उसके ऊपर आएंगे कि क्या कर दो स्वयं को नम्रचित्त। सीट किसको दे दो, श्रेष्ठ से सीट दूसरे को दे दो, तो वो क्या करेगा, आपको दे देगा, और नहीं दिया तो नहीं। हम उसने अगर हमने तो सीट दे दी, पर उसने बाद में नहीं दिया तो कोई चिंता नहीं, ठीक है फिर, ठीक है। हमने तो सीट दे दी, परंतु इस आशा से दी है कि वो उतर कर दे देगा, परंतु उसने नहीं दी तो बाबा देगा हमको। चलो तो सीट दे दो, श्रेष्ठ सीट दे दो। बाबा ने यहां उदाहरण दिया, जैसे रास करते हैं और कोई ठीक से हाथ नहीं चलाता है तो उसको सहयोग दिया जाता है हाथ का, उसको सिखाया जाता है। तो यहाँ भी सहयोग दो, सहयोग के नोट तुम्हारे जेब में होने चाहिए, कभी अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है। तो सहयोग दो, दान नहीं, ब्राह्मण आत्माओं को दान नहीं, सहयोग दो। तो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा सहयोग देगा, जो सबसे ज्यादा संस्कार मिलन की रास करेगा, फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ डांस करेगा। तो सीट दे दो, सीट दे दो तो सीट मिल जाएगी, रास भी हो जाएगा, डांस भी हो जाएगा और भविष्य में वो प्रबंध भी हो जाएगा डांस करने का। हमें एक बात और भूल, एक बात जो भूल गई है, बाबा ने एक अच्छा उदाहरण दिया बीच में, वो भोजन का, नमक और मीठा का, हर चीज चाहिए। वैसे इस यज्ञ में भी हरेक की आवश्यकता है, हरेक में कोई ना कोई विशेषता है, हरेक की आवश्यकता है। हाँ, तो हरेक आवश्यक है और हरेक श्रेष्ठ है। तो संस्कार मिलन की रास, और एक वरदान में क्या कहा, इसी के लिए बाबा ने हरेक को क्या दो, रिस्पेक्ट, रिगार्ड दो तो रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। जैसे संसार में कहावत है क्या, छोटों को प्यार, बड़ों को रिगार्ड, पर बाबा क्या कह रहे हैं, सबको रिगार्ड, पहले आपका पार्ट, सबको रिगार्ड दो तो सर्व के स्नेही बन जाएंगे। रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा। यहाँ पे गणित ही दूसरा है, उल्टा गणित है, यह आध्यात्मिक गणित है, यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। ज्ञान बांटो तो ज्ञान बढ़ेगा, खजाने लुटाओ तो खजानों की वृद्धि होगी, इच्छाओं के पीछे पीट कर दो तो इच्छाएं परछाई की तरह पीछे पीछे आ जाएगी। और यहाँ बाबा कह रहे रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगा। जैसे यज्ञ में मददगार बनते हो तो मददगार बनना अर्थात मदद लेना है, उसी तरह रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिल जाएगा। तो रिगार्ड, रिकॉर्ड रखना है इस बात का। संस्कार मिलन की रास कैसे होगी, पहले आप, दूसरों को आगे रखना, तो टकराव नहीं होगा, टक्कर नहीं होगी, संघर्ष नहीं होगी, घर्षण नहीं होगा। अगर हो गया तो उसका परिणाम क्या होता है, योग, उस दिन का योग खत्म, दूसरे दिन का भी खत्म। वो कितना दिन खत्म उसकी कोई गिनती नहीं है, जितना दिन वो विस्तार चलेगा उतना दिन खत्म। एक क्रोध का असर 6 महीने लेता है। तो जब भी टकराव होगा हमें देखना है कि, और टकराव सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कार्य क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में, वहां अगर टकराव हो गया, बाबा ने कहा है लून पानी नहीं होना है, एक तुम शिरखंड होकर रहना है तुम्हें। तो संस्कार मिलन की जो रास है वो हर दिन करने की है, हर दिन हर समय, क्योंकि हमारा सारा टकराव किससे होगा, बाहर की आत्माओं से इतना नहीं होता है, किससे होता है, इसी ब्राह्मण परिवार में। बाबा ने 69 की एक मुरली में, ये 70 की एक मुरली में, 18 जनवरी 1970 की मुरली में कहा है कि परीक्षाएं आएगी, फिर ये नए रूप में परीक्षाएं आएंगी। एक तो वो निश्चय की परीक्षा थी, वो तो हो गई, पर अभी तन की आएगी, मन की आएगी, वातावरण की आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण एक बताई, ब्राह्मण परिवार से आएगी, आएगी 18 जनवरी 1970। ब्राह्मण परिवार से जो बातें आती है उनको प्रैक्टिकल बातें समझ, बातें नहीं समझना, पेपर समझना और आगे बढ़ना। और जो भी परिस्थिति आ रही है उस हर परिस्थिति में कोई ना कोई वरदान छिपा हुआ है। अगर हम अपने ही जीवन को देखें तो हमारी सबसे ज्यादा वृद्धि तब हुई है जब बहुत बड़ी परिस्थिति थी, हमारी सबसे ज्यादा वृद्धि तब हुई है जब हम सबसे ज्यादा मुश्किल में थे, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस जब हमारे थी, तब हम, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव थी और हमने सबसे ज्यादा तभी सीखा है, ज्ञान को तभी हमने समझा, ज्ञान को तभी प्रैक्टिकल में लाया जब सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में थे हम। और हर परिस्थिति में एक सूक्ष्म वरदान छुपा हुआ है, हमें सिखाने के लिए आ रही है, पाठ पढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, विघ्न विनाशक की डिग्री देने के लिए, क्लास आगे बढ़ाने के लिए, ये कार्य है परिस्थिति के। पर हम क्या, उसका शत्रु बन जाते हैं, दोष देते हैं, शिकायत करते हैं, बाबा के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और बाबा भी तब साक्षी होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो ये परिस्थितियां किस लिए आ रही है, सिखाने के लिए, बेस्ट टीचर है हमारा परिस्थितियां। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनके जो फ्रूट है, उनका जो फल है बहुत ही मीठा है, परंतु उस समय बहुत कड़वा लगता है, परंतु उन सभी परिस्थितियों में एक वरदान छिपा हुआ है, हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आ रही है वो परिस्थितियां, इस बात को कभी नहीं भूलना है। फिर बाबा कह रहे हैं फ्रांस से मुलाकात। क्या कहा उनसे? यहां और एक बात कही बाबा ने टीचर से, टीचर शब्द और सेवाधारी शब्द कौन सा मीठा है? टीचर हो या सेवाधारी, तो टीचर बाबा ने कहा सेवाधारी शब्द बहुत मीठा है। बाबा स्वयं ओबीडियंट सर्वेंट है, तो ओबीडियंट सर्वेंट बनना अर्थात ताजधारी बनना, ये युक्ति है, चतुर सुजान बनना है। कहो सर्वेंट और बन जाओ राजा ये युक्ति है कहो सर्वेंट अनुचर जिसको शब्द कहते, किंकर अनुचर सेवक नौकर, ये संसार के शब्द है। पर बाबा हमेशा कहते हैं एक तो गॉडली सर्वेंट या फिर कहते हैं सेवाधारी, ये धारी शब्द लगाया है सेवा को। तो कहो सर्वेंट और क्या बन जाओ? किंग, ताजधारी बन जाओ। सच्चतुर सुजान बाप के चतुर सुजान बच्चे हैं। फिर बाबा बात कर रहे फ्रांस से, क्या कहा फ्रांस वालों से? हर कदम में पदम, मोह की कमाई, याद की यात्रा की, याद की जो यात्रा है उसके हर कदम में पदमों की कमाई है। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, ये अनुभव हो कि कमाई हो रही है। जैसे कोई दुकानदार होता है, बहुत गिराक आते हैं तो कितनी उसकी खुशी होती है, पैसे जितने गिनते समय उसके चेहरे पर नशा होता है। तो वैसे क्या हमारे चेहरे में भी वो नशा है कि हमारी कमाई हो रही है? अमृत वेले योग कर रहे तो क्या ये अनुभव होता है कि झोली भर रही है, कमाई हो रही है? यहां नहीं कैशियर बनना है तो हर कदम में पद्मों की कमाई, माला माल खजाने प्राप्त है, अखूट खजाने हैं, चाबी मिली हुई है, चाबी लगानी आती है कि चाबी अटक तो नहीं जाती, और चाबी कौन सी है? मैं अधिकारी आत्मा हूं, सारे खजाने मेरे हैं, मालिक हूं, मालिक बनना नहीं है, पहले से हूं। गुलाम प्रयत्न करता है मालिक बनने का, फिर भी बन नहीं पाता है कभी। हम गुलाम थोड़ी ना है जो मालिक बन रहे हैं। जो गुलाम होगा वो सोचेगा, स्वप्न देखेगा कि मैं भी एक दिन मालिक बन जाऊं। यू आर नॉट स्लेव, यू आर ऑलरेडी मास्टर। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, यू डोंट हैव टू बिकम लाइक अदर्स, यू डोंट हैव टू, यू आर ऑलरेडी ए मास्टर पीस, ओनली कम टू रियलाइज इट एंड नो इट। तुम पहले ही मास्टर पीस हो, मास्टर पीस अर्थात उत्कृष्ट कृति, पहले ही हो, बनना नहीं है, केवल कम टू नो इट रियलाइज इट, उसको जानो, उसको समझो कि मैं ये ऑलरेडी हूं। जैसे वो बिल्ली का उदाहरण दिया ना, वो उसने क्या कहा, राज एक ही है, मैं बिल्ली हूं और वो चूहा है, कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, मैं हूं। तो ये वाली बात है, यहां स्मरण की बात है। तो मैं अधिकारी आत्मा हूं, ये क्या है? चाबी। और सारे खजाने ले लो, कौन कौन से खजाने हैं? प्रेम का खजाना, सुख का खजाना, शांति का खजाना, अनगिनत खजाने हैं बाबा के। वो सारे खजाने चाबी लगाओ और ले लो। कभी तो बाबा ने कहा अभी चाबी की नहीं, खजाने खुले ले लो। पहले पहले की जो मुरली है 70s और 80s में, उसमें बाबा हमेशा बात करते कि चाबी लगाओ, मेरा बाबा चाबी है और ले लो। बाद की जो मुरली है उसमें कहा चाबी की आवश्यकता नहीं, खजाने खुले, जब चाहे आओ और ले जाओ। चाबी की भी जरूरत नहीं, आओ और ले जाओ, खुला भंडारा है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सोहम वो मंत्र की बात और वेस्ट की बात वो भी हमने चर्चा कर ली। और भी कोई बात है मुरली में? हाँ, तो यहाँ एक उदाहरण दिया है बाबा ने मेहमान के लिए। मेहमान जो है हमारे जो जड़ चित्र है वो भी उपराम रहते हैं, पर ये बताया किसने कि वो उपराम है? उनमें अपनापन नहीं है। बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण को कभी ये नहीं लगता है कि ये मेरा मंदिर है। तो जब वो जड़ उपराम रह सकते हैं, जड़ मेहमान स्थिति में रह सकते हैं, मेहमान वृत्ति है उनकी, तो तुम तो चैतन्य आत्माएं हो। अगर मेहमान वृत्ति में रहेंगे तो प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ और स्थिति ऊंच हो जाएगी। बाबा का ये बड़ा ही अद्भुत सा उदाहरण है कि बाबा कह रहे हैं कि उनको अपनापन है नहीं जिसमें कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को कभी ये नहीं लगता कि ये मेरा मंदिर है, तो उनमें वो भाव नहीं है तो तुम में क्यों अपनापन? ये बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही है। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा इस मुरली में बाबा ने दी है, कौन सी? समय पर याद आ जाए, बस यही बात है। जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी नियम है, जो भी मर्यादाएं हैं, जो भी ज्ञान की बातें हैं, जो भी इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बातें हमने जो अभी की, वो सारी समय पर याद आ जाए कि मैं कौन हूं। क्योंकि परिस्थितियां अचानक से आ जाती है, कोई टाइम तिथि तारीख नहीं है उनकी, कभी भी आ जाती है। इसके लिए जो योद्धा होता है हमेशा सोता होता है, जैसे ही आवाज आता है सबसे पहले हाथ कहां जाता है? तलवार पर। कौन है पहले देखेगा, कौन है? तो हमारे जो शस्त्र है वो सदैव आसपास रहने चाहिए। बिल्कुल आवाज आई थोड़ी सी भी, नींद में भी तुरंत हाथ कहां जाना चाहिए? तलवार की तरफ। कौन है? फिर समझेगा, अरे ये तो मित्र है, ठीक है फिर आ जाओ, वो बात की बात है फिर, वो कौन आया। परंतु आवाज आते ही हाथ पहले उधर जाना चाहिए, अटेंशन अटेंशन प्लीज, कई मुरलियों में आता है ना, अटेंशन प्लीज, अटेंशन की बात है, अटेंशन कम नहीं होना चाहिए। अटेंशन का पहरेदार बाबा ने कहा, सदा घूमता रहे तो कभी गलती नहीं होगी, हार नहीं होगी। तो तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या दी बाबा ने? समय पर बाप दादा की शिक्षाएं याद आ जाना। वो याद तब आएगी जो बार बार रिवाइज करेंगे। जो पिछले संडे था ना, भूल जाते हैं, भूलने की विधि, उसका निवारण क्या बताया था? बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक वो मन की गहराई में ना समा जाए, मन का एक हिस्सा ना बन जाए, अवचेतन मन में ना उतर जाए, अंतस में ना चला जाए, एक रूप ना हो जाए हम उन शिक्षाओं से, तो फिर वो भूलेगा नहीं। एक तो ये बार बार रिवाइज, दूसरा अनुभव में लाओ उसको। केवल एक ब्रेन से नहीं थिंकना है, हमारे जैसे दो कहते हैं, एक लॉजिकल एक क्रिएटिव ब्रेन है। तो क्रिएटिव ब्रेन विजुअलाइज करता है, पिक्चराइजेशन करता है, कलराइजेशन करता है, चित्र बनाना, कलर करना, विजुअलाइज करना, अपने स्वरूप को देखना, उसमें रंग भरना, ये सारा क्रिएटिविटी का काम है। तो अनुभव में लाना, चेक करना और चेंज करना, चेक करना और चेंज करना, यही कार्य है। जितनी गहराई हमारी जो चेकिंग है वो भी थोड़ी गहरी गहरी होती जाए, बस एक ही चेकिंग नहीं चले। अमृत वेला किया, टिक मार्क, यस, ये यस से नहीं होगा। कैसा किया, कितना शक्तिशाली किया, क्या क्या अनुभव हुआ उसमें, वो सारी बातें उसमें आ जाती है। तो इस मुरली को हम यहीं पूरा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।